Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shivananda Lahari in Hindi, presented by Mahamandaleshwar Swami Sri Atmananda Giriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Om. ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशमृगवरा वीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तस्तुतममरगणिर्व्याघ्रकृत्युं वसानं विश्वाद्यं विश्ववंद्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं सुकं गौडपदं महंतं गोविंदयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्री शंकराचार्यमथास्य पद्मपादंच हस्तामलकंच शिष्यं तन्तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरुं संततमानतोऽस्मि विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदी दिव्यचक्षुषे श्रेयः प्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे ओम शांति 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 शिवाय नमः ओम शिवाय नमः ओम शिवाय नमः ओम नमः शिवाय शिवाय नमः ओम शिवाय नमः ओम शिवाय नमः ओम नमः शिवाय शिवाय नमः ओम शिवाय नमः ओम शिवाय नमः ओम नमः शिवाय शिवाय नमः ओम शिवाय नमः ओम नमः शिवाय हराय नमः ओम हराय नमः ओम हराय नमः ओम नमो हराय हराय नमः ओम हराय नमः ओम हराय नमः ओम नमो हराय हराय नमः ओम हराय नमः ओम हराय नमः ओम नमो हराय 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 नमः ओम नमो हराय बाबाय नमः ओम बाबाय नमः ओम बाबाय नमः ओम नमो बाबाय बाबाय नमः ओम बाबाय नमः ओम बाबाय नमः ओम नमो बाबाय बाबाय नमः ओम बाबाय नमः ओम बाबाय नमः ओम नमो बाबाय बाबाय नमः ओम भावाय नमः ॐ नमो भावाय मृडाय नमः ॐ मृडाय नमः ॐ मृडाय नमः ॐ नमो मृडाय मृडाय नमः ॐ मृडाय नमः ॐ मृडाय नमः ॐ नमो मृडाय मृडाय नमः ॐ मृडाय नमः ॐ मृडाय नमः ॐ नमो मृडाय मृडाय नमः ॐ मृडाय नमः ॐ नमो मृडाय शिवाय नमः ॐ शिवाय नमः ॐ शिवाय नमः ॐ नमः शिवाय शिवाय नमः ॐ शिवाय नमः ॐ नमः शिवाय भज मन शिव शिव निरन्तरम् जप मन शिव शिव निरन्तरम् भज मन शिव शिव निरन्तरम् जप मन शिव शिव निरन्तरम् रट मन शिव शिव निरन्तरम् स्मर मन शिव शिव निरन्तरम् रट मन शिव शिव निरन्तरम् स्मर मन शिव शिव निरन्तरम् ॐ नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ओ ओ ओ आदिगुरु भगवान शंकराचार्य जी द्वारा विरचित शिवानंद लहरी नामक इस शिव भक्ति से ओतप्रोत स्तोत्र पर विचार चल रहा है। विचार और अभ्यास के लिए 20वां श्लोक। सदा मोहाटव्यां चरति युवती नाम कुच गिरौ नटत्यासा शाखा स्वटति झटिति स्वैरमभितः कपालिन् भिक्षो मे हृदय कपिमस्त्यन्त चपलम् दृढ़ भक्त्या बद्धा शिवभवदीनम् कुरु विभो धृतिम् स्तंभाधाराम् दृढ़गुण निबद्धाम् सगमनाम् विचित्राम् पद्माढ्यम् प्रतिदिवस सन्मार्ग घटिताम् स्मरारे मच्चेतः स्फुटपटकुटिम् प्राप्य विशदाम् जय स्वामिन् भक्त्या सह शिवगणैस्वेवित विभो प्रलोभाद्यैरर्था हरणपरतन्त्रो धनिगृहे प्रवेशोद्युक्त्युक्तस् भ्रमति बहुधा तस्करपते इमं चेतश्चोरम् कथम् इह सहे शंकर विभो तवाधीनम् कृत्वा मयि निरपराधे कुरु कृपां करोमि त्वत्पूजां सपदि सुखदो मे भव विभो विधित्वं विष्णुत्वं दिशति खलु तस्याः फलमिति पुनश्च त्वां द्रष्टुं दिवि भुवि वहन् पक्षि मृगताम् अदृष्ट्वा तत्खेदम् कथमिह सहे शंकर विभो सदा मोहाटव्याम् चरति युवता युवतीनां कुचगिरौ नटत्याशा शाखा स्वटति झटिति स्वैरमभितः कपालिन् भिक्षो मे हृदय कपि मत्यन्त चपलम् दृढ़ भक्त्या बद्धा शिवभवदधीनं कुरु विभो सदा मोहाटव्याम् प्रसंग बड़ा सुंदर है। भक्ति भाव प्रदान होता है, भक्ति क्रिया प्रदान भी नहीं और शब्द प्रदान भी नहीं। कई बार हम भक्ति के नाम पर क्रियाओं में ही उलझे रह जाते हैं। वह एक भक्ति का रूप तो है लेकिन वास्तव में वह स्थूल भक्ति है। मैं उसका खंडन नहीं कर रहा हूं लेकिन जैसे भगवान भक्ति के नाम पर हम पूजा अर्चना में ही समय लगाते हैं और बहुत खर्च कर देते हैं, कभी कभी तो इतना खर्च कर देते हैं, लाखों खर्च कर देते हैं। आजकल तो भक्ति के नाम पर एक फैशन ही चल पड़ा है। बड़ा ताम झाम हो जाता है, आप लोग तो अनुभवी हो। नवरात्रि जब आ जाता है गरबा करते हैं, खूब नाचते हैं, खूब बजाते हैं, रात भर शोरगुल होता है। क्यों ऐसा कर रहे हो? तो बोले देवी का भक्ति कर रहे हैं, नवरात्रि है। और इसी तरह पंजाब की तरफ रात जागरण का प्रसंग चलता है, ओहो एक ज्योत जला लेते हैं और रात भर इतना कीर्तन करते हैं, बाजा बजता, इतना डम डम डुम डुम करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, लाखों खर्च करते हैं। इसका खंडन नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन ये जो है भक्ति केवल क्रियात्मक हो गई। क्रियात्मक का अर्थ कर्म में ही औपचारिकता रह गई। भक्ति प्रार्थना तो मैं हमेशा ये कहा करता हूं, भक्ति शब्द सुनने हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन भाव शून्य नहीं होनी चाहिए। भाव शून्य हो और शब्द शून्य हो, भाव शून्य न हो शब्द शून्य हो, सबसे उत्तम भक्ति तो वही है। शब्द कोई प्रयोग नहीं कर रहे हैं, वाणी मौन है, लेकिन भाव पूर्ण रूप में हृदय का भाव पूर्ण रूप में परिवर्तन हो रहा हो, वो सबसे उत्तम भक्ति माना जाता है। क्रिया शून्य हो, शरीर और इंद्रियों से कोई कर्म न हो, कोई क्रिया न हो, लेकिन भाव प्रदान हो, तो वो भक्ति बहुत अच्छी मानी जाती है। इसका मतलब मैं पूजा आदि अर्चना कीर्तन प्रार्थना इस सब का खंडन नहीं कर रहा हूं। इसकी अपनी अपनी एक, आजकल तो आप लोग क्वालिटी की बात करते हो ना, हर चीज में क्वालिटी क्वालिटी करते हो ना, तो उसकी बात कर रहा हूं, भक्ति की क्वालिटी। तो ये सब भक्ति की क्वालिटियों में उत्तम क्वालिटी भक्ति तो वही है, हालांकि उससे भी उत्तम भक्ति और भी है, भाव से भी उत्तम भक्ति। तो भक्ति त्वात्मैव मे मतम, भगवान श्री कृष्ण ने कह दिया, सबसे उत्तम भक्ति ज्ञानात्मिका भक्ति। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतुनो अर्जुना, आर्तो अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी। उदारा सर्व ये वेते, इन चार में से बाकी जो तीन है पहले के वो उदारा है। उदारा माने औपचारिक हैं, लेकिन ज्ञानी तो आत्मैव मेत, किंतु ज्ञानी तू आत्मैव मे मतम। मेरा ये निश्चय है कि सबसे उत्तम भक्ति तो ज्ञान ही है, ज्ञानी ही उत्तम भक्ति, क्योंकि वह मेरी आत्मा ही है। इसी को पराभक्ति भी कहते हैं, ज्ञान को ही पराभक्ति कहते हैं। अब भक्ति के लिए भाव व्यक्त करने का है शब्दों के द्वारा, भक्ति के लिए भाव व्यक्त करना है तो भाव व्यक्त करने के क्रम में यहां शंकराचार्य जी वह उस लौकिक भाव का यहां आश्रय ले रहे हैं, जबकि शंकराचार्य जी पूर्ण ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम उस उत्तम कोटि के भक्तों में से एक हैं, जो ज्ञानी भक्त के रूप में, भक्ति के अनुसार ज्ञानी भक्त के रूप में माना जा सकता है। उससे उत्तम भक्ति का स्वरूप और कोई नहीं हो सकता जो शंकराचार्य जी ने की। फिर भी उस ऊंचे कोटि में पहुंचे हुए परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ ऐसे आचार्य जब भगवान के भक्ति करते समय सामने खड़े होकर प्रार्थना करते हैं तो इस प्रकार के भाव व्यक्त करते हैं मानो और किसी महान अज्ञानियों के प्रतिनिधित्व करके उसकी तरफ से मानो ये भाव व्यक्त कर रहे हों। क्योंकि विरोधाभास आ रहा है, एक तो शंकराचार्य जी को हम उस कोटि के भक्त के रूप में देख रहे हैं, मान रहे हैं, विश्वास और श्रद्धा कर रहे हैं, एक परमहंस एक सन्यासी जीवन मुक्त पुरुष के रूप में हम मानते हैं, और उनकी भावना शब्दों के रूप में इस तरह प्रकट हो रही हो तो विरोधाभास लगता है। तो इसकी संगति ऐसे लगा जा सकता है, लोग कहते हैं कि शंकराचार्य जी ये क्यों कह रहे हैं, उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। मान लो एक प्रकार से, ये तो आप लोग भी व्यवहार करते हो, मान लो कि आपको अमेरिका जाना है, जाते ही हो, लंदन जाना हो, यूरोप जाना हो, और वीजा लेना पड़ता है ना, कि वीजा के बिना तो जाना नहीं देगा, तो उसके लिए पेपर करके फिर वो अंतर्वार्ता यानी इंटरव्यू लेता है, वो बुलाता है ना, अंतर्वार्ता के लिए बुलाते हैं वो लोग एम्बेसी में। मान लो कि वह आपकी गुजराती हिंदी नहीं जानता और आप अंग्रेजी नहीं जानते, तो उस अवस्था में वार्ता होगी कैसे? उस अवस्था में वार्ता होगी कैसे? तब दूसरा व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति रखा जाएगा दोनों के बीच में। तो वह मान लो कि आपकी हिंदी भी जानता है और अंग्रेजी भी जानता है, आप अपनी भाषा में बोलेंगे और वह उसको उसकी भाषा में समझाएगा, मध्यस्थ तीसरा व्यक्ति। तो उसकी भावना से आपको परिचय कराएगा और आपकी भावना से उसको परिचय कराएगा। संवाद का यही अर्थ होता है, संवाद का माध्यम यही है कि एक की भावना से दूसरा व्यक्ति परिचय हो, नहीं तो वाक का संवाद का कोई औचित्य नहीं है। तब कहीं कहीं कोई गूंगा व्यक्ति है, शब्द नहीं बोलता है, लेकिन उसकी भाव पूर्ण है, तो उसके भाव को शब्द के माध्यम से व्यक्त करना होगा। तो उसके भावनाओं से परिचित जो कोई व्यक्ति है वह उसका माध्यम बनेगा। ये क्या कह रहा है? तो उसके संकेतों को जानने वाला व्यक्ति कहता है ये कह रहा है। मुख संवाद भी होता है ना, मुख संवाद। तो मान लो शंकराचार्य जी वही मध्यस्थता का भी काम कर रहे हों, ये भी कहा जा सकता है। मान लो कि एक प्राकृत, असंस्कृत और प्राकृत जिज्ञासु है, भक्त है, वो परमात्मा के प्रति अपने भाव व्यक्त करता है लेकिन कर नहीं पा रहा है, वो अपनी समस्या को वो व्यक्त नहीं कर पा रहा है। तब उसके भावनाओं से परिचित जो व्यक्ति है वह उसका अनुवाद कर रहा है, सुना रहा है कि यह ये कहना चाहता है। आप लोगों ने एक कहानी सुनी है ना, साहित्यकार कालिदास जी की है, कालिदास जी का उनकी जीवनी कैसी रही शुरू की, बोलो। कालिदास पहले कैसे रहे? पट्ट मूर्ख रहे, निरक्षर भट्टाचार्य रहे, पट्ट मूर्ख रहे, उनके लिए काला अक्षर भैंस बराबर था। भैंस भी काली होती है, अक्षर भी काले होते हैं, है ना? तो काला अक्षर भैंस बराबर, हम लोग ऐसे कहा करते हैं, पट्ट मूर्ख। अब जिससे उनकी शादी हुई वो एक षड्यंत्र पूर्वक शादी हुई है, कुछ पढ़े लिखे विद्वानों ने, और क्योंकि वो विद्वत्तमा बड़ा भारी विदुषी थी, उस समय में उसके बराबर कोई दूसरा विदुषी था ही नहीं, क्या विद्वान ही नहीं था, बोलो उस समय में कोई भी विद्वान उसके बराबर के कोई था ही नहीं उस समय में, और सुंदर भी थी विदुषी भी थी। और उसने प्रतिज्ञा कर दी, मैं उसी से शादी करूंगी जो शास्त्रार्थ में मुझे परास्त करेगा। बोलो, उसकी चैलेंज थी विद्वत्तमा की, जो शास्त्रार्थ में मुझे परास्त करेगा मैं उसकी पत्नी बनूंगी, उसे शादी करूंगी, बाकी जो मेरे से हारेगा उससे क्या शादी करना है, मुझे जो जीतेगा उससे मैं शादी करूंगी। तो बड़े बड़े पंडित उससे शादी करना तो चाहते थे, बड़ी सुंदर थी, लेकिन शर्तों के अनुसार उससे शादी नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उसको परास्त नहीं कर पा रहे थे शास्त्रार्थ में। तो कहानी आप लोगों ने पहले सुनी होगी, मैं सांदर्भिक बता रहा हूं। तो उन पंडितों ने एक षड्यंत्र किया कि इसको कोई मूर्ख से शादी करा देनी है। मूर्ख से शादी कैसे कराएं भाई, तो कहते हैं कालिदास साधारण अनपढ़ किसान थे, घर में भैंस पाल रखा था और उसको पेड़ से घास वगैरह काट के लाते थे, लकड़ी काट के लाते थे, बेचते थे, उस घास से उसी का गुजारा चलता था योगक्षेम। तो एक समय एक पेड़ में चढ़े और उसके शाखा को काट रहे थे, सुना है ना आप लोगों ने। लेकिन वो शाखा काट कैसे रहे थे, काटने के बाद जो शाखा नीचे गिरेगा उधर तो आप खुद बैठे थे हैं? जो कट जाने के बाद जो नीचे गिरेगा वो बाग के तरफ खुद बैठकर और उसको काटे जा रहे, काटना चाहिए जो नहीं गिरने वाले पक्ष उधर बैठकर काटना चाहिए ताकि कटने के बाद शाखा गिरे अपने सुरक्षित रहे। और यहां उल्टा हो रहा था, कटने के बाद जो गिरने वाला भाग था उधर बैठकर काटे जा रहे थे। बोलो इससे बढ़कर और कोई मूर्ख कौन हो सकता है। तो उसको पहले बुला लिया नीचे, उसने कहा कि मैं काट लूं पूरा करूं फिर आऊंगा। बोले अरे काटेगा तो तू जिंदा ही नहीं रहेगा मूर्ख, जिस तरह तू काट रहा है तू पहले आ जा नीचे। तो बीच में छोड़ा और आगे पंडितों ने विचार किया कि इससे बढ़कर दूसरा मूर्ख नहीं हो सकता। बेटा तू शादी करना चाहेगा? तो उसने कहा शादी करना तो चाहता हूं लेकिन मुझसे कौन शादी करेगा। बोले इस गांव में सबसे सुंदर एक कन्या है और सबसे विदुषी है, हम उससे तेरी शादी करा देंगे। लेकिन उससे हमारी शादी होगी कैसे, मेरी शादी होगी कैसे, उसने तो शर्त रखा है जो शास्त्रार्थ में मुझे हराएगा। बोले यही तो हम कोशिश कर रहे हैं, हम जो उपाय बता रहे हैं उस हिसाब से उससे शास्त्रार्थ कर रहा है और उस उपाय से तू जीतेगा। बोले मैं पढ़ा ही नहीं है तो कैसे जीतूंगा उसके सामने, उसके लिए पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम पढ़ा रहे हैं ना तेरे को, हम जो पढ़ा रहे हैं उतने ही तुमको याद करनी है बाकी कुछ नहीं। देखो मूर्ख व्यक्ति पढ़े लिखे से शादी करना मिल जाए तो बड़ा खुश होता है उसको, गरीब लड़का अमीर लड़की से शादी करने को मिले इतना खुश हो जाएगा है? गरीब लड़की अमीर लड़के से शादी करने के लिए क्या खुश हो जाएगी, वाह, जो स्वाभाविक ही है। तो उसने कहा कि ठीक है हम तैयार, क्या करना पड़ेगा बोलो, तो हम तुम्हें उसके सामने ले जाएंगे और हम कहेंगे कि इसकी वाणी नहीं है, ये मौन है, बोल नहीं सकता, लेकिन बड़ा भारी विद्वान है, तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर देगा। तो वो जो प्रश्न करेगी उसका तुमको इशारे से ही उत्तर देना है, बोलना नहीं है, खबरदार बोलेगा तो है? तो बोले ठीक है, क्या इशारा करना है वो भी तुम बताना। उसको पूरा प्रशिक्षित किया, ट्रेनिंग दिया और कह दिया कि चलो एक पंडित है बड़ा भारी शास्त्रार्थ शुरू हो जाए। विद्युत्तम तैयार हो गए, पहुंचे शास्त्रार्थ के लिए। पहले प्रश्न कौन करेगा? बोले पहले प्रश्न तुम करो, विद्युत्तमा को कहा पंडितों ने, हम अनुवादक का काम करेंगे, इसके तरफ से अनुवादक का काम करेंगे और तुम प्रश्न करो, उसका उत्तर ये देगा। तो बोले ठीक है, क्योंकि गूंगे के साथ तो इशारे से ही बात करनी है, शब्दों से बात करने से कोई औचित्य नहीं है। तो विद्वत्तमा ने कहा कि दुनिया में वास्तव में सत वस्तु एक ही है, इसके बारे में तुम्हारा क्या कहना है बोलो। उसने अपना पक्ष रख दिया, दुनिया में सत वस्तु एक ही है ऐसा दिखाया। तो उसको इशारा कहा तू दो करना, दो उंगली दिखा देना। तो उसने दो उंगली दिखा दिया, क्योंकि द्वैतवादी हो तो दो उन्हीं दिखाएंगे ना। विद्वत्तमा तो अद्वैतवादी थी वेदांती, और कोई द्वैतवादी होंगे सांख्य, पंडित लोगों ने सांख्य की तरफ से कह दिया दिखा दे, उसने दिखा दिया। क्या कह रहा है ये? बोले इसने क्या अर्थ समझा पता है? तुम जो है उसको समझा दिया, इसने जो ये कर रही है क्या कह रही है पता है तुमको? पता नहीं क्या कह रहे, तेरे एक आंख फोड़ दूंगी कह रही है, इसका उत्तर दे अब तू। बोले वो मेरी एक आंख फोड़ने के लिए कह रही है, मैं उसके दोनों आंख फोड़ दूंगा। उसने तुरंत उत्तर दिया, दो उंगली दिखा दिया, मैं उसके दोनों आंख फोड़ दूंगा। वो तो गुस्से में आ गया, बोल दिया। विद्वत्तमा ने पूछा क्या कह रहा है? बोले तुम तत्व एक मानती हो, ये कहता है कि प्रकृति और पुरुष दो है, माया और ब्रह्म, प्रकृति और पुरुष दो हैं। अकेले पुरुष क्या करेगा? प्रकृति के साथ पुरुष मिलेगा, पुरुष और प्रकृति के संयोग से सारे विश्व की सृष्टि हुई है, ये कह रहा है। विद्वत्तमा ने कहा कि है तो सही विद्वान, ये बात तो ठीक कह रहा है, ठीक कह रहा है ये। और जबकि उस मूर्ख ने उत्तर क्या दिया था, दो आंख फोड़ूंगा, उसको तो इतने समझ में आया था, वो मेरा एक आंख फोड़ेगी तो मैं दो आंख फोड़ दूंगा। हाँ, अब उसने बाद में पूछा, हाँ, प्रकृति के जो कार्य हैं पंचमहाभूत, विद्वत्तमा ने पूछा पंचमहाभूत हैं इसके बारे में तुमको क्या कहना है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश। तो उसने पूछा ये क्या कह रही है, ऐसा करके क्या कह रही है।